आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत टूटी हुई तस्बीह के दानों की तरह बिखरी पड़ती है। तो आप कहते हैं मैं क्या करूं, एक छोटी सी तब्दीली ले आए जो आप कर सकती हैं, बिकॉज अ लिटल कैन चेंज अ लॉट। एक छोटी सी तब्दीली एक बहुत बड़ी तब्दीली का जरिया बनती है। तो लिहाजा अपने हिस्से का काम कीजिए, अपने अंधेरे के चिराग जलाते जाइए, अपने अहदों को पूरा करें, ये हमारे दीन का शुआर है, कमिटमेंट्स को पूरा करें। कोई फॉर्म फिल किया है तो उसको निभाइए, मुहासबा कीजिए। अल्लाह ताला आपको मुझे इन सारी बातों में यही बातें सिखा रहे हैं कि जब लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले होते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। आज हम छोटी छोटी बात पे अपनी जिम्मेदारियों को पीछे डाल दें तो ये खयानत होगी। इसीलिए फरमाया कि अल्लाह ताला को खाइन लोग पसंद नहीं है। फिर इसी तरह दुश्मनों से मामला करने का एक और असूल, वइन जनहु लिस्सलमी फजनह लहा वतवक्कल अलल्लाह इन्नहु वस्समीउल अलीम। रिस्क लेना सिखा रहा है अल्लाह ताला, अगर वो सुलह की तरफ झुके हैं तो तू भी सुलह की तरफ झुक जाए, और अल्लाह पर भरोसा रख, यकीनन वो सुनने वाला जानने वाला है। अगर वो तुझसे दगाबाजी करना चाहेंगे तो अल्लाह तुझे काफ़ी है, इसी ने अपनी मदद से मोमिनों से तेरी ताईद की है। इनके दिलों में बाहमी उल्फत भी इसी ने डाली है। जमीन में जो कुछ है अगर तू सारे का सारा भी खर्च कर डालता तो भी इनके दिल आपस में ना मिला सकता, ये तो अल्लाह ही ने इनमें उल्फत डाल दी है, वो गालिब हिकमतों वाला है। ये है जी उल्फत, अल्लाह फयुअल्लिफु तालीफ, मोहब्बत फाते आलम। साहबा के दिल एक दूसरे के सब मोहब्बत से जुड़े हुए थे, इसलिए एक दूसरे की कमी बेशियों से दरगुजर भी करते और उनको समझा बुझा भी लेते और फिर आपस में जुड़े भी रहते, वो गालिब हिकमतों वाला है। ए नबी, आप देखिए कि अल्लाह के नबी को यहाँ कितने तसल्ली वाले अंदाज से बताया जा रहा है, या युहन नबी युहस्बुकल्लाह, ए नबी तुझे अल्लाह काफ़ी है, और इन मोमिनों को जो तेरी पैरवी कर रहे हैं। असल बात है कि आप अल्लाह के रास्ते पे सच्चे हों, फिर अल्लाह आपकी मदद हर मैदान में करता है। अगली आयत वो है जो आज लोगों की आंखों में बहुत चुभती है, जिसको निकालने की धमकियां दी जाती हैं। सूरत तौबा और अनफाल लोगों को पसंद नहीं, क्यों? क्योंकि वो ब्राह रास्त जिहाद की बात करती है, किताल की बात करती है। तो ज़रा इस आयत पे गौर कीजिएगा, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा पढ़ के देख लीजिए, किसी का एक लफ्ज़ भी ना हो तो आपको क्या समझ आता है। या युहन्नबी युहर्रिदिल मोमिनीन अलल किताल, ए नबी ईमान वालों को जिहाद का शौक दिलाओ। यह आयत क्या कह रही है इसमें कोई ढका छुपा पैगाम जो आपको मुझे समझ ना आए, बल्कि आगे क्या फरमाया, इन यकु मिनकुम इश्रून साबिरून, अगर तुम में 20 भी सबर करने वाले होंगे तो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 100 होंगे तो 1,000 काफिरों पर गालिब रहेंगे, इस वास्ते कि ये बेसमझ लोग हैं। यहाँ हेड काउंट को देखा, आप नोट करेंगे पूरे पारे में गिनती बहुत सारी आ रही है। अब यहाँ से समझ आता है कि काफिर 1,000 भी हो ना तो ला यफ़क़हून, क्योंकि अल्लाह को नहीं पहचाना। अल्लाह ने साहबा के ईमान के मुताबिक पहले बात की, अब जरा सी हल्की बात कर दी जा रही आने वाले लोगों के ईमान को सामने रखते हुए। अल आन खफ्फफल्लाहु अनकुम, अच्छा अब अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करता है, वो खूब जानता है कि तुम में ना तवानी है, बस अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, यानी रेशो बदल गया, और अगर तुम में से 1,000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2,000 पर गालिब रहेंगे, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। क्या पता चला कि मोमिन की कुव्वत उसके ईमान के साथ है। हेड काउंट नहीं है, ईमान काउंट है इस्लाम। मा कान लिन्नबी यकून लहू असरा, अब बदर के कैदियों से मुतल्लिक आयात जो बहुत ही खूबसूरत मुकाम है तफसीर के एतबार से। नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए जब तक कि मुल्क में अच्छी तरह खून रेजी की जंग ना हो जाए। तुम तो दुनिया के माल चाहते और अल्लाह का इरादा आखरत का है। अल्लाह ताला जोरावर बा हिकमत है, अगर पहले ही से अल्लाह की तरफ से बात लिखी हुई ना होती तो जो कुछ तुमने ले लिया है इस बारे में तुम्हें को बड़ी सजा होती। बस जो कुछ हलाल और पाकीज़ा गनीमत तुमने हासिल की है, क्या करो, फकुलू, बस खूब खाओ पियो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला गफूर रहीम है। या अय्युहन्नबी कुल लिमन फी अय्दीकुम मिनल असरा इन यालमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन युतीकुम खैरन मिम्मा उकिज़ा मिनकुम, ए नबी अपने हाथ तले के कैदियों से कह दो कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में नेक नियति देखेगा तो जो कुछ तुमसे लिया गया है इससे बेहतर तुम्हें देगा। इब्ने अब्बास कहा करते थे, ये मेरे बारे में बात है, जितना मैंने अपना जिज़िया दिया उससे बहुत ज़्यादा मुझे बाद में इस्लाम ने दिया। और हकीकत है कि इस्लाम में शुरू में पहले देना पड़ता है, फिर बाद में मिलता है, और इतना मिलता है कि ज़ीरो ही नहीं ख़त्म होते। बंदा रो पड़ता है कि अल्लाह मैंने क्या तेरे लिए दिया, मैंने क्या हिजरत की, मैंने क्या कुर्बानी दी, मैंने क्या माल लगाया और तू मुझे कितना दे रहा है। तो अल्लाह इससे बेहतर देता है, और फिर गुनाह भी माफ़ फरमाएगा। हिजरत गुनाहों को माफ़ कर देती, जिहाद गुनाहों को माफ़ कर देता, और अल्लाह बख्शने वाला है। और अगर रह गई बात कि इन कैदियों से मुतल्लिक आपके दिल में कोई डाउट है, तो वहीं युरीद खियानतक, और अगर वो तुझसे खयानत का ख्याल करेंगे तो ये तो इससे पहले खुद अल्लाह की खयानत कर चुके, यानी कुफर और शिर्क की सूरत में। आखिर इसने इन्हें गिरफ्तार करा दिया, और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। क्या पता चला? इन आयात पे ज़रा गौर व फिक्र करते हैं। पहली बात यह है तदब्बुर और अमल की, अपनी सलाहियतों को अल्लाह के रास्ते में लगा दें और नतीजा अल्लाह पर डाल दें। लोगों से ना मांगिए, अल्लाह से मांगिए, और फिर अपना दामन खुला कर लें, अल्लाह आपको कितना देगा। नेकी की तौफीक अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे पाता, इसलिए कसरत से ये कलिमात कहिए, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। इस रास्ते में शैतान कई किस्म की रुकावटें खड़ी करता है, हत्ता के बाद अच्छे अच्छे लोगों को आपका दुश्मन बना देता है। तो शऊर के साथ सुबह शाम 7 दफ़ा ये दुआ मांगिए, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। कुरान की रहनुमाई, कुरानी रहनुमाई के नुक्ते, तौबा और कसरत से इबादत करना सआदतमंद जिंदगी की बुनियाद है। वादा खिलाफी और अहद शिकनी मोमिनों की सिफात में से नहीं। अगर भाईचारा खालिस ईमानी बुनियादों पर हो तो दिलों से बुग़्ज़ और कीना खत्म कर देता है। किसी से भी कीना और हसद महसूस हो ना, तो चेक कीजिए क्या आपका दिल क्या सिर्फ इसी वजह से है, या कोई रिश्तेदारी है, या कोई खानदानी बोझ है, या रिश्ता नाता टूटा हुआ है। हम रह जाते ग्रजिस पाल के अपने दिल को डस्टबिन बना देते हैं। गौर व फिक्र के चंद गोशे, जब मुसलमान ईमान और इत्तबा में पक्के सच्चे हो जाएं तो अल्लाह इनके लिए काफ़ी हो जाएगा। जैसा कि हुआ आज, क्यों नहीं हो रहा? हमारे ईमान उस दर्जे के नहीं है। लेकिन निहारी पकाएं और पूरे लेवल तक ना पहुंचे और चूल्हा बंद कर दें तो खाने के लिए काफ़ी नहीं होगी। इसी तरह कामों को पूरा कीजिए, पूरे दिल से करें, जो करें खूब करें। शरई सजाएं और हदूद गुनाहों को रोकने का सबब बनती हैं, क्योंकि पकड़ के डर से लोग उस काम के करीब नहीं जाते। और ये खूबसूरत चीज़ आपको इस प्यारे से मुल्क में दिखती है। इस्लाम की ये खासियत है कि वो हमेशा गालिब होता है, मगलूब नहीं। अल्लाह दिलों को नज़दीक कर दे तो कोई इनको दूर नहीं कर सकता। सहाबाए कराम की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत थी, उसके बारे में तो आप आगे भी सुनते ही जाएंगे, पढ़ते ही जाएंगे कि किस तरीके से दुश्मन भी गवाही देते थे कि जो मोहब्बत मोहम्मद के साथ ही उनसे करते हैं वो कोई और नहीं करता। और क्यों ना करें, जिनको जिस रास्ते से रब की पहचान मिली, मुलाकात हुई, जिनको मकसद हयात मिला, वो क्यों ना मोहब्बत करें। याद रखिए कि अल्लाह के नबी नबी होने के साथ एक उस्ताद भी थे, और उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता तो वही जाने जो इस रिश्ते में बंधा हुआ है। क्या औलाद और माँ बाप का रिश्ता होगा, क्या बहन भाइयों का रिश्ता होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा दिल खोल के मोहब्बत करते थे, हत्ता के फिर जो मांगा उन्होंने दिया। आइए जरा अगली आयतें दिल से सुने, दिमाग वाली आयतें नहीं है, वो गुजर गई, अब दिल की आयतें, ये दिल के फैसले, दिल के सौदे। आयत नंबर 72 से, इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अन्फुसिहिम फी सबीलिल्लाह, जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिन लोगों ने इनको पनाह दी और मदद की, ये सब आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। और जो ईमान तो लाए लेकिन हिजरत नहीं की, तुम्हारे लिए इनकी कुछ भी रिफाकत नहीं जब तक कि वो हिजरत ना करें। हाँ, अगर वो तुमसे दीन के बारे में मदद तलब करें तो तुम पर मदद करना ज़रूरी है, सिवाय इन लोगों के तुम में और इन मेहदों पे माँ है। तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह उसको खूब देख रहा है। 4 गिरोह हैं इंसानों के, इसके बरक वल्लज़ीना कफरू, काफिर आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। अगर तुमने ऐसा न किया तो मुल्क में फितना होगा और जबरदस्त फसाद हो जाएगा। जो लोग ईमान लाए और हिजरत की, और अल्लाह की राह में जिहाद किया और जिन्होंने पनाह दी और मदद पहुंचाई, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए बख्शिश है और इज्जत की रोजी। लाओ मग़फिरत व रिज़्क़ुन करीम। और फिर वल्लज़ीना आमनू मिन बादु व हाजरू व जाहदू माकुम फौलाइका मिनकुम वौलुल अरहामी बादुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह इन्नल्लाहा बिकुल्ली शैइन अलीम। और जो लोग इसके बाद ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ होकर जिहाद किया, बस ये लोग भी तुमसे ही हैं, रिश्ते नाते वाले इनमें से बास से ज्यादा नज़दीक हैं अल्लाह के हुक्म में। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ के जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। रुक पूरा हुआ आयत 75 पे और साथ ही साथ सूरत भी पूरी हुई। अल्लाह अमल पूरा करवा दे। आयात पे अमल लीजिए, इस उम्मीद पर अपना माल दें कि आप भी अपने माल के जरिए जिहाद करने वालों में शामिल हो जाएं। अंसार की तरह अपने इलाके में किसी परदेसी का गम हल्का करें, उसे पनाह दें, इसकी अजनबियत दूर करें। याद रखिए कि दिल लोगों के साथ लगता है। जब कोई नई जगह आता है ना, तो उसको नयापन लगता है हर तरफ। कोई आपके शहर में ऐसा है, कोई गरीब, कोई मिसकीन, जिसका कोई फौत हो गया, किसी की माँ चली गई, किसी का बाप चला गया, जाइए और उनको तसलियाँ दीजिए, उनके साथ वक्त गुजारिए, उनके सर पे शफ़क़त का हाथ फेरिए, उनको कॉल कीजिए, बेटा क्या फील करते हो, कोई बात नहीं, सब्र करो। किसी का घर टूट गया, उसको तसलियाँ दीजिए, किसी की बेटी टूट गई, किसी का बेटा चला गया, सब लोगों को तसलियाँ दिया करें। मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें मिलेंगी। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, आप पर इनका हक दूसरों से ज़्यादा है। कुरान से रहनुमाई। अल्लाह ताला पर कोई गालिब नहीं आ सकता और ना कोई इससे बचकर भाग सकता है। अगर कोई मुसलमान भाई दीनी मामले में मदद तलब करें, तो दूसरे मुसलमान पर इसकी मदद लाजिम है। काफिरों के साथ दिली दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि यही तो फितना व फसाद की जड़ है। किसी कमज़ोर या कैदी मुसलमान को रहाई दिलाना हमारा दीनी फरीज़ा है। जब मुसलमान मुसलमानों को दोस्त नहीं बनाएंगे, तो शरीयत की बड़ी बड़ी इबादतें, मसलन जिहाद और हिजरत, ख़त्म होने लगेगी। फिर तो वो पूरा ढांचा ही ख़त्म हो गया ना, जैसे आपके लिए अंदर से स्केल्टन निकाल दें तो मलबा रह जाएगा। अल्लाह की राह में हिजरत और जिहाद करना सच्चे ईमान की निशानी है। यहाँ कैदियों से मुतल्लिक भी जो बातें हुई, इस इज्तिहादी गलती को भी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से काबिले अजर करार दिया गया। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस पूरे सुनने सुनाने पढ़ने में जो गलती हुई, उस पे हमारी इसलाह भी फरमा दे और हमें माफ़ी फरमा दे और हमें आइंदा से बेहतरीन तरीके से लेने वाला बना दे। फिर चूंकि सूरत के आखिर में खयानतों की बहुत बात हुई, तो खयानत निफाक की अलामत है। फिर इसी तरह से एक और चीज़ जो हमें इस सूरत से लेनी की थी, और वो क्या है कि अपने नबी की हर सुन्नत और हर हदीस का दिफा करना अपनी ज़िंदगी का शौर बना लीजिए। इल्म लें, अमल करें, और अगर कोई ऐसी बात है जो बाहर अच्छी ना भी लगे, तो उस पर शर्मिंदा ना हो। मसलन पीने वाली चीज़ में मक्खी गिर गई, तो उसका दूसरा पर भी डबो के निकाल लो और पी लो। कितना अरसा हुआ कि मुसलमान इस हदीस पे एम्बेरस फील करते थे, शर्मिंदा होते थे, और बाज़ दफ़ा नॉन मुस्लिम भी ऐसी बातें खोल खोल के पूछते हैं, भाई ये क्या है। आज साइंस ने बता दिया कि मक्खी के एक पर में गंदगी है, और वो पहले डबोती है, वो भारी ही होता है, और दूसरा हल्का पर ऊपर रह जाता है। अगर उसको भी डबो लें तो एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं और जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। ये ना भी बात होती तो हमारा ईमान है क्या? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। तो अल्लाह के नबी को उसमें हसना समझिए। आपके बताए हुए तरीकों के ऊपर चलेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी खूबसूरत होगी। और जो कुफर की बातें हैं, तो याद रखिए, कुफर जिसको आज आप बेयकीनी कह दें, शक कह दें, ना शुक्रपन कह दें, इनकार कह दें, एथियज़म कह दीजिए, ये कंटेजियस होता है, एक से दूसरे को लगता है। मुकम्मल तौर पर अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रखिए। और अगर कहीं ऐसी जगह हो जहाँ कुफर का गलबा हो, तो मास्क पहन कर रहिए, क्योंकि ये जरासीम आपको भी लग सकते हैं। जब कोरोना था, तो लोगों ने एक दूसरे से लॉकडाउन कर लिया, एक दूसरे को अलग कर दिया, क्वारंटाइन में चले गए, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सेज को जाना पड़ता था। कैसे वो प्लास्टिक के अजीबोगरीब से कपड़े पहन के जाते थे, आम हालात में कोई कभी पहन के किसी के सामने ना आए, बिल्कुल अजूबा लगता था बंदा, लेकिन जान का डर था। तो याद रखिए, ईमान के डर वाले भी अगर कुफार के बीच में रह रहे हैं तो भी, या अगर किसी ऐसी जगह पे है इस्लाम लेकिन कुफर का गलबा है जहनों पे, दिलों पे, दिमागों में, तो अपने आप को मुकम्मल सिक्योरिटीज़ के साथ रखिए। और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से इस दीन के दिफा के लिए लगा दीजिए, कभी तलवार से, कभी तीर से, कभी हाथ से, कभी कलम से। और बाकी रह गई बात, अल्लाह ताला ने जो ये सूरत दी, और बल्कि अब अगली सूरत तौबा है, थोड़ा सा इसको भी ले लीजिए, वाहिद सूरत है कुरान पाक की, जिससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं। और 129 आयात हम इसमें देखेंगे। लफ्ज़ तौबा से पता चलता है कि इसमें कोई तौबा की बात है। इस सूरत पूरी के अंदर से आपने तौबा का मौजू ढूंढना है। तीन मुखलसिन सहाबा की भी तौबा है और बाकी भी चीज़ें हैं। और इस सूरत में मुसलमानों के साथ कुफार के ताल्लुकात की जो हदबंदियाँ थी वो पेश हो रही हैं। पिछली सूरत में हमने पढ़ा भाई जाना होले सिलमी फजना, अगर कुफार भी सुलह की तरफ झुके तो तुम झुक जाओ, कोई बात नहीं है, रिस्क ले लो, क्या करेगा जाकर, तुम्हारे अंदर से क्या ले जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा दो। क्योंकि इस्लाम का मकसद ना सुलह है ना जंग है, इस्लाम का मकसद गलबा इस्लाम है। ये अब सूरह तौबा में पढ़ने लगे। ये कैसे होगा, ये वक्त और हालात के मुताबिक होगा। जो कौम आपस में उल्फत वाली हो, वो टीम जो आपस में मोहब्बत रखती हो, वो जगह जहाँ के लोग एक दूसरे के साथ इतने प्यार से जुड़े हों कि अंधा एतमाद हो अपने लीडर पे, जैसे सहाबा का अल्लाह के नबी पर एतमाद था, किसने जीतवा दिया, छोटी छोटी बात पे वो क्वेश्चन मार्क खड़े नहीं कर देते थे। आपस में दिल में मोहब्बत हो, अल्लाह फयुअल्लिफु बैनकुम, खिदमत का जज्बा हो, दूसरों को देने वाले हों। आप देखिए कि कोई बहू आती है ना घर में, तो लड़की खिदमत गुजार होती है, कैसी भी शक्लो सूरत की हो, गैर बिरादरी से आई है, वो लोगों के दिल जीत जाती है। और इसका ऑपोजिट बिल्कुल नहीं। आज आपको मुझे खिदमत करने वाले बनना है, जहां जाए खिदमत करना है, लेने वाले नहीं देने वाले मोहब्बतें पाते हैं। हम आएंगे तो क्या दोगे, तुम आओगे तो क्या लाओगे, ये नहीं है। और जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्तों में जाएंगे, आपको जो आखिरी आयतों में मुहाजिर और अंसार की बहुत ही प्यारी बांट दिखी है ना, तो याद रखिए हर बंदा जो नया नया दीन में आता है ना, वो पहले मुहाजिर होता है, क्योंकि सबसे पहली हिजरत तो गुनाहों से होती है। होते होते फिर जगह और वतन छूटता है, इब्तदाई दर्जों से आला दर्जों तक मुहाजिर फी सबीलिल्लाह बनना है। फिर उसके बाद कुछ लोग हैं जो कर चुके होते हैं, वो ज़रा स्टेबल हो जाते हैं, जैसे नया नया कुरान पढ़ने वाला। हमारी ऐसी बहनें जो दौरे कुरान में पहली दफ़ा आ रही हैं और परेशान और हैरान है, ये क्या हो रहा है भाई, इस कुरान में ये भी है ये भी है, तो ये आज की मुहाजिरात हैं अपने हिसाब से। आपको अल्लाह ने समझ दे दी, आप कई साल से पढ़ पढ़ा रही हैं, आपको पता नहीं शुरू में झगड़े होते हैं, बाद में घर में सब ठीक हो जाता है, शुरू में नाराज होते हैं, बाद में सब मान जाते हैं, तो आप उनके हाथ थामिए। आज के मुहाजिर और अंसार बनिए, और जितना ज्यादा आप इस चीज़ के ऊपर अपने आप को रखेंगे, देखिएगा लोग उतना ज्यादा दीन की तरफ आएंगे। लोगों को अपनी आदतों पर काम करना है, अपने माहौल को ठीक करना है, अपने तरीकों को बदलना है, तो हर इंसान का जिहाद अपनी ज़ात से शुरू होते होते दुश्मन की गर्दन पे तलवार रखने से जाता है। तो मोमिन या तो अंसार होगा या मुहाजिर होगा, और आज के दौर में जो अंसार नहीं मुहाजिर नहीं वो मुनाफिक होगा। अल्लाह ताला आपको मुझे बेहतरीन तरीके से रखे। सूरत अनफाल गज़वे बदर के फौरन बाद नाजिल हुई, सूरत तौबा तबूक के बाद और उसके करीब के दौर में नाजिल हो रही है। बीच में कितने साल है खुद ही देख लीजिए, सन 2 हिजरी में बदर है और तबूक देखिए कहाँ आ रही है, कई सालों का वक्फा था। आप कह सकते हैं के अनफाल में गलबा इस्लाम का आगाज था और तबूक में गलबा इस्लाम की इंतहा है। इसलिए सूरत अनफाल का अंदाज नासिखाना मोहब्बत वाला था, अब सूरत तौबा का अंदाज आपको हाकिमाना दिखेगा, क्योंकि अब हुज्जत तमाम हो गई। ये ऐसे जैसे आप अपने छोटे बच्चे से लाड करते, प्यार करते, उसको समझाते हैं, लेकिन बड़े बच्चे बात ना माने तो गुस्सा आता है कि इतने साल से तुम्हें ये बात कह रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। इसी तरह उस्ताद भी शुरू में बहुत नरमी की दिखाते हैं, लेकिन जब कई साल पढ़ने के बाद भी ना तब्दीली आए तो गुस्सा कर सकते हैं। तो बस तौबा का अंदाज हाकिमाना है। ऐसे लोगों को यहाँ यही बता दिया कि तुम इस सूरत को पढ़ो और इसमें अपने हालात के मुताबिक गाइडलाइन लो। आइए जरा शुरू से पढ़ के, काफी कुछ इसकी तो आयतों से ही आपको मिलेगा, और बाकी जितना भी अल्लाह ताला में तौफीक देगा हम बात करेंगे। बरातुम मिन अल्लाह व रसूल ही लल्लज़ीन आहदतुम मिन अल मुशरिकीन, इलाने बरात है। और याद रखिए कि ये सूरत नाजिल हो रही है 9 हिजरी में, फतेह मक्का के बाद। अगले साल जब हज का मौसम आया तो अब सवाल ये था कि अब तो मक्का मुसलमानों की कस्टडी में, वो मुसलमान मुल्क बन चुका है, तो क्या अब लोगों को उनके शिर्क वाले तरीकों पे हज करने दिया जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने एक अच्छे बेदार मग़ज़ लीडर के तौर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बनाकर भेजा अमीर लश्कर, और बाद में हज़रत अली को भी भेज दिया कि चलो जाओ, कहीं ये ना कह दें कि कुरैशी शख्स नहीं आया और अपने कबीले का था ये वो। तो ये सारा ऐलान अब इन दो बड़ी हस्तियों के ज़रिए करवाया जा रहा है। अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से बेजारी का ऐलान है इन मुशरिकों के बारे में जिनसे तुमने अहदो पैमान किए हैं। बस ऐ मुशरिको, तुम मुल्क में 4 महीने तक तो चल फिर लो, जान लो कि तुम अल्लाह ताला को आजिज़ नहीं कर सकते। और ये भी याद रहे कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को बड़े हज के दिन साफ इत्तला है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है। अगर अब भी तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर तुम रूगरदानी करो तो जान लो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते, और काफिरों को दुख की मार की खबर पहुंचा दीजिए। या यौमल हज अकबर है तो अरब लोग हज अकबर हज को कहते थे और उम्रे को हज असगर कहते थे। हमारे कल्चर में से ज़रा सा मुख्तलिफ है, इसलाह कर लीजिए। फिर इसी तरह से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ये बात करके ये बता दिया गया कि डे टू डे, जो कहना चाहिए कि हर दिन की तरह की जो इंफॉर्मेशन देनी होती है, ये लीडर्स का फ़र्ज़ होता है। इल्लल्लज़ीना आहदतु मिनल मुशरिकीन, सिवाय इन मुशरिकों के जिनसे तुम्हारा माहदा हो चुका है और उन्होंने तुम्हें ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, ना किसी की तुम्हारे खिलाफ मदद की है, तो तुम भी इनके माहदे की मुद्दत इनके साथ पूरी करो। अल्लाह ताला परहेजगारों को दोस्त रखता है। सुभान अल्लाह। हमने पीछे पढ़ा सूरत अल आराफ में कि अंबिया कराम की कौमें तबाह कर दी गईं क्योंकि उन्होंने नहीं माना। बिल्कुल इसी असूल को यहाँ आप समझ लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लम जिनके पास खुद बराह रास्त गए और वो अरब लोग थे, उनके पास 3 ऑप्शंस थी। नंबर 1, मुसलमान हो जाते तो फ़ैख्वानुकु फिद्दीन। नंबर 2, निकल जाओ, जाओ फिर जिम्मी बनो, जिज़िया दो और रहो। तीसरी ऑप्शन ये थी, तलवारों से फैसला होगा। अल्लाह ताला ने इन 3 ऑप्शंस को सूरत तौबा के शुरू में रखा, और 2 तरह के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे। एक वो थे जो बिल्कुल स्टबन थे, जानते बूझते आपके मुखालिफ थे, उनको तो तलवारों से साफ कर दो। दूसरे कुछ वो थे जो इग्नोरेंट थे, जिन तक बात नहीं पहुंची होती, यानी जजीरा नुमाए अरब में गलबा इस्लाम के लिए 2 तरह से अल्लाह ताला ने लोगों को अलग करवाया। वो मुशरिक भी हैं और मुखालिफ भी हैं, उनको कत्ल कर दो। लेकिन मुशरिक तो हैं लेकिन मुखालिफ नहीं हैं, ऐसे अनजान से हैं, तो उनको 4 माह की मोहलत दिलाई जा रही है ताकि कुरान की कुव्वत तस्खीर के ज़रिए उनके दिल मुसख्खर हो जाएं। आयत नंबर 5 में लिखिए, ये हुरमत के महीने नहीं है, ये मोहलत के 4 महीने हैं। फैजन सलखलशुरुल हुरुम, फिर जब हुरमत वाले महीनों के गुजरते ही मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो। हाँ, क्योंकि जब वीज़ा ख़त्म हो गया तो गवर्नमेंट निकाल देती है, एक्सपायर्ड पेपर्स के साथ तो कोई किसी मुल्क में नहीं रहता, तो एक्सपायर्ड हो चुके हैं ये, क्योंकि इनको 4 माह की मोहलत दे दी गई थी, एक ग्रेस पीरियड दिया गया था। इनको गिरफ्तार करो, इनका मुहासरा करो और इनकी ताक में हर घाटी में जा बैठो। हाँ, अगर वो तौबा कर लें और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात अदा करने लगें तो तुम इनकी राहें छोड़ दो। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ये है अखलाक नबवी, और मुराद भी यही है। 4 माह रहे, मुसलमानों को देखा, भाला सुना। ऐसे तो नहीं होता था ना कि हर वक्त ये मुसलमानों के साथ थे। ठीक है, मक्का में साथ थे, लेकिन हर एक का अपना घर अपना तरीका है। कभी आप किसी एक के साथ कुछ दिन रहते हैं, आपको उसकी आदतें अच्छी लगती हैं, आप अपना लेते हैं, तो 4 माह में इनको प्यार दो, मोहब्बत दो, कुरान दो। देखो, या मुराद है कि वो मुसलमान हो जाए तो आप बिल्कुल उनके रास्ते छोड़ दो। हाँ, अगर मिन अहद मिनल मुशरिकीन, और अगर मुशरिकों में से कोई आपसे पनाह तलब करे तो इसको पनाह दो, यहाँ तक कि वो कलाम अल्लाह सुन ले, फिर इसे अपनी जाए अमन तक पहुँचा दे। ये इसलिए कि ये लोग बेइल्म है। यकीन कीजिए, आज अक्सरियत ऐसे ही कुफार की है। इस्लाम के दुश्मन तलवारें उठाकर मैदान जंग में जाने वाले तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। वो तो इतने बुजदिल है, वो तो पीस पीस की बातें करते रह जाएंगे, लेकिन अमूमन सड़कों पे चलते, हाँ, रास्तों में मिलते लोग ऐसे ही हैं। तो अल्लाह कहते हैं इनको अल्लाह का कलाम सुनो। या नोट कीजिए, कलाम अल्लाह, कुरान का असल जो मुकाम है ना, वो सुनना और सुनाना है। जितना ज्यादा कोई सुनेगा, हत यस्मा कलाम अल्लाह, अपने लिए नियत कीजिए, मैंने लोगों को कुरान सुनाना है। जहां बैठे आपके हमसाए में भी अगर कोई गैर मुस्लिम है, कोई आपकी मेड ऐसी है, उसको सुनाइए। यहाँ तो बहुत कम मौके होंगे, लेकिन फिर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस जगह जहाँ हम काम कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन कोई मुसलमान हो रहा है, और दावत का काम ही असल काम है कि जो यहाँ आप लेते देते हैं, और उसकी वजह से दुनिया में लोगों को इस्लाम का पता चल रहा है। कोई किसी प्रोजेक्ट पे आता है और इधर आके मुसलमान हो जाता है, कोई हॉस्पिटलाइज और मुसलमान हो जाता है, और क्या चाहिए? आपके मेरी वजह से एक बंदा इस्लाम कबूल कर ले, 100 सुरखूंठों से बेहतर है। तो लोगों के लिए दिल में मोहब्बत और दर्द पैदा कीजिए। इसलिए फरमाया कि अगर ये तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा मामला करें, तो तुम भी उनके साथ बेहतरीन मामला करो। कई फ़यकून उलिल मुशरिकी नाहदुन इंद अल्लाह व इंद रसूल ही, मुशरिकों का अहद अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक कैसे रह सकता है सिवाय इनके जिनसे तुमने अहद पैमान मस्जिद हराम के पास किया है। जब तक वो लोग तुमसे माहदा निभाएं, तुम भी इनसे वफादारी करो। अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत रखता है। बिल्कुल आपको अंदाज लग रहा है, पीछे भी पढ़ कर आए ना, खारजा पॉलिसी मुसलमानों की। सूरत निसा में हमने आयतें पढ़ी, कुछ सूरह मायदा में पढ़ी, तो यहाँ बिल्कुल उस दौर के तकाजों पे बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करके बता दिया गया, और साथ ही फरमा दिया इनके बादों का क्या एतबार इनका अगर तुम पर गलबा हो जाए। तो ना ये कराबदारी का ख्याल करें, ना अहदो पैमान का। अपनी जुबानों से तो तुम्हें परचा रहे हैं, लेकिन इनके दिल नहीं मानते, क्योंकि इनमें से अक्सर फासिक हैं। वो अक्सर हम फासिकून, क्या है इनका फिस्क? इश्तरौ बि आयातिल्लाहि समनन कलीला, उन्होंने अल्लाह तआला की आयतों को बहुत कम कीमत पर बेच दिया, और इसकी राह से रोका। बहुत बुरा है जो ये कर रहे हैं। तो ये भी एक तिजारत है कि अल्लाह की आयतों के मानी बदल देना, मफहूम बदल देना। ला यरकबून फी मोमिन इल्लम वला जिम्मा, ये तो किसी मुसलमान के हक में किसी रिश्तेदारी का या अहद का मुतलक पास नहीं करते, ये हैं ही हद से गुजरने वाले। आप भी अगर ये तौबा कर लें, गिनिए जरा तौबा का लफ्ज कितनी दफा आ रहा है। देखिए, इस्लाम उन लोगों को जो नबी के सामने खड़े हैं, दुश्मनियां दिखा रहे हैं, उनकी हिदायत का कितना हरीस है, तो हमें कितना ज्यादा और हरीस होने की जरूरत है। इसलिए इन चीजों को पढ़ते वक्त दुआ किया करें कि अल्लाह मेरी वजह से लोगों को हिदायत दे दे, और मुझे भी हिदायत पे कायम रखना। अब भी अगर ये तौबा कर ले और नमाज के पाबंद हो जाए और जकात देते रहें, तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। वाखवानकुम फिद्दीन, सुभान अल्लाह, वनुफस्सिलुल आयाति लिकौमी यालमून, हम तो जानने वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, यानी अब कोई जानना चाहे तो उसको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, और अगर कोई ना मानना चाहे तो उसको नहीं समझ आएगी। और बिलफर्ज अगर ये धोखा देते हैं, कैसे? वही न कसो ईमान हो मेम बाद दीम, अगर ये लोग अहदो पैमान के बाद भी अपनी कस्में तोड़ दें और तुम्हारे दीन में ताना जनी करें, तो तुम भी इन सरदाराने कुफर से भिड़ जाओ। इनकी कस्में कोई चीज नहीं, मुमकिन है कि इस तरह वो भी बाज आ जाए, यानी फिर कोई रियायत नहीं, फिर कोई रुख्सत नहीं, क्योंकि ऐसे लोग काबिले एतमाद नहीं। अला तुकातिलूना कौमा, तुम इन लोगों की सरकूबी के लिए, यानी इनके ऊपर हमला करने के लिए क्यों तैयार नहीं होते, जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ दिया और पैगंबर को जिला वतन करने की फिक्र में हैं, और खुद ही अव्वल बार उन्होंने तुमसे छेड़खानी की है। क्या तुम इनसे डरते हो? अल्लाह ही ज्यादा मुस्तहिक है कि तुम इसका डर रखो, बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। क्या खूबसूरत अंदाज है ना हाकिमाना, ऐसे लग रहा है जैसे कुब्बा रोब हस्ती की तरफ से ये पैगाम आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह हर एक के साथ उसके हिसाब से मामला करता और कराता है, और समझने की जरूरत है हम सबको भी। तो क्या पता चला, इन आयात पे जरा सा तदब्बुर करते हैं और अमल के नुक्ते लेते हैं। आपने इर्द गिर्द के गैर मुस्लिमों को कुरान सुनाइए, हो सकता है इनमें से किसी को इस्लाम मिल जाए। इसी तरह अपने इर्द गिर्द के मुसलमानों को भी कुरान सुनवाइए, शायद उनको हिदायत मिल जाए। आज हमारा हाल यह है कि हाथ में हीरे हैं और हम कंकरों के पीछे भाग रहे हैं। कितने मुसलमान हैं जिनको कुरान समझ आता है, और कभी ये ख्वाहिश अल्लाह पूरी करवा देगा कि सिर्फ अरबी का दौरा कुरान हो, क्योंकि उर्दू में वो बात ही नहीं बनती, तर्जमे में तो दिमाग ही नहीं खुलता मेरा। अल्लाह हिदायत दे हम सबको। फिर इसी तरह अपने ऐसे किसी काम पर गौर कीजिए जिसे आपका नफ्स पसंद करता हो, मगर अल्लाह को वो काम ना पसंद है। इसे सिर्फ अल्लाह के डर से छोड़ दीजिए, देखिएगा अल्लाह आपको इसके बदले में क्या देगा। इसी तरह अल्लाह के नबी की सिखाई भी दुआ पढ़ते रहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका खशयतक फिल गैबी वश्शहादा वकलिमतल हक फिर रिदा वल गज़ब। अल्लाह मैं आपकी खशियत का सवाल करती हूँ, छुपे में भी जाहिर में भी, और मैं खुश हूँ या मैं गज़ब में उसमें भी। ये दुआ इंशाल्लाह हमारा मिजाज दुरुस्त करेंगी। कुरान से रहनुमाई, अल्लाह रसूल मुशरिकीन से बरी हैं, हमें भी इनसे बरी रहना है। अल्लाह दुश्मनान इस्लाम से तौबा करने पर अच्छाई का वादा करता है, हमें भी ऐसा ही करना है। तौहीद नमाज की पाबंदी और ज़कात की अदायगी से इस्लामी भाईचारे का सबूत मिलता है, हमने अपना भी अमल चेक करना है। गौर व फिक्र के चंद गोशे, सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह का नाजिल ना होना इस बात की दलील है कि कुरान सरकशों के हक में बहुत सख्त और पुरजोर है। अल्लाह ने अपना नाम भी नहीं रखा इधर जहाँ माहदे टूट रहे हैं। सिर्फ जुबान से तौबा तौबा करना काफी नहीं, अमल से इसका सबूत देना। शहादतैन के बाद यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बाद अशरफ और फजीलत वाला रुकन नमाज है, फिर इसके बाद ज़कात है। इसीलिए इन दोनों को जिक्र के साथ ज्यादातर पेश किया जाता है। तो अपनी नमाजों और ज़कात का हिसाब लीजिए। मुशरिकीन को कुरान सुनाकर और कुरान का पैगाम पहुंचाकर आप इन पर अल्लाह की हुज्जत पूरी कर देंगे। ख्वाहिशात की पैरवी और दुनियावी लज्जतें नाफरमानी और सरकशी की वजह हैं, इन पे काबू पाना है। दोस्ती के होने या ना होने का फैसला करने में दीन को मैयार बनाइए, तबीयत और मिजाज को नहीं, ये बहुत अहम है। शिर्क से तौबा, नमाज और ज़कात की अदायगी दीनी भाईचारे की शर्त है। सच्चे और पक्के मोमिन लोगों के डर पर अल्लाह के डर को तरजीह देते हैं। तो अल्लाह से डरना है, बंदों से नहीं डरना। जितना ये कुरान लेकर जाते जाएंगे, अल्लाह खुद बखुद लोगों के दिलों में या तो आपका रूप डाल देगा या आपकी मोहब्बत डाल देगा।